ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद सातवां अध्याय, अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। श्लोक संख्या 38। कोति प्रयासो असुर बाल का हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्र वत्सत स्वस्यात्मना साक्षुरशेष देहिनाम् सामान्यता किं विषयोपपादने कोति। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की का क्या अति प्रयास कठिन प्रयास असुर बाल का हे असुर पुत्रो हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासने भक्ति करने में स्वे अपनी हृदय में छिद्रवत आकाश की तरह, यहां गलती से लिखा है अवकाश की तरह, सतह सदैव विद्यमान स्वस्य अपना या जीव का आत्मनः परमात्मा का सख्य हो शुभ चिंतक मित्र अशेषा असीम देहिना देहधारी जीवों का सामान्यतः सामान्य रूप से किम क्या आवश्यकता है विषय उपपादन पादने इंद्रिय भोग के लिए इंद्रिय प्रदान करने वाली क्रियाओं से। अनुवाद। हे मित्र हे असुर पुत्रो परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निसंदेह वे सारे जीवों के शुभचिंतक तथा मित्र हैं और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है, तो फिर लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते। वे इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम सात समान बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं। तात्पर्य, चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं अतः कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। फिर भी यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त हो तो भगवान उसे सहज ही प्राप्त हैं। भगवान की तुलना आकाश से की जाती है क्योंकि आकाश विस्तृत होकर भी सबों की मनुष्यों की क्या पशुओं तक की पहुँच में है। भगवान परमात्मा रूप में श्रेष्ठ देशी तथा सखा के रूप में विद्यमान रहते हैं, जैसे कि वेदों में पुष्टि की गई है सयोजु सखायो। भगवान परमात्मा रूप में सदैव जीवात्मा के साथ हृदय में स्थित रहते हैं। वे जीव के इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि हृदय के भीतर रहते जाते हैं और जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे सदा संपर्क कर सकता है। कोई भी इसे मात्र भक्ति के द्वारा कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करता है कृष्ण कीर्तन, त्यों ही भगवान से उसका संपर्क स्थापित हो जाता है। भगवान के किसी एक या सभी विधियों से भक्ति तुरंत ही भगवान के संपर्क में आ जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अतः भगवान से संपर्क होने में कोई कठिनाई नहीं होती। कोति प्रयास। दूसरी ओर नरक जाने में काफी प्रयत्न करना होता है। यदि कोई अवैध यौन मांसाहार द्यूत कीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन द्वारा नरक जाना चाहे तो उसे इतनी सारी चीजें ग्रहण करनी होती हैं। अवैध यौन के लिए वैश्यालय जाने के लिए धन का प्रबंध करना होगा, मांसाहार के लिए अनेक कसाईघर खोलने होंगे, द्यूत कीड़ा के लिए नाच घरों या होटलों की व्यवस्था करनी होगी तथा मादक द्रव्य सेवन करने के लिए अनेक होलियां खेलनी होंगी। स्पष्ट है कि यदि कोई नरक जाना चाहता है तो उसे काफी परिश्रम करना होगा, किंतु यदि वह भगवादान जाना चाहे तो किसी भी कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। भगवादान जाने के लिए वह कहीं भी एकांत में किसी भी दशा में रहकर भूमि पर बैठकर परमात्मा का ध्यान कर सकता है और भगवान के विषय में कीर्तन श्रवण कर सकता है। भगवान के पास जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। अदांत गोभी विष्टा तमस्त्रम, इंद्रियों को वश में ना कर पाने के कारण नर्क जाने के लिए अनेक प्रयास करने होंगे, किंतु यदि वह विचारवान हो तो सरलता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान निरंतर उसके साथ रहते हैं। भगवान तो श्रवणम कीर्तनम विष्णुम की सरल विधि से प्रसन्न होते हैं। निस्संदेह भगवान का कहना है, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषयति तदहं भक्त्या प्रेतम अश्नामि प्रेतात्मना। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता फूल फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता 9:26। भगवान का ध्यान कहीं भी और सर्वत्र किया जा सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने मित्र असुर पुत्रों को उपदेश दिया कि बिना कठिनाई के भगवत धाम लौट जाने का मार्ग अपनाए। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और बहुत ही विशेष आज का ये श्लोक है, हम सब साधकों के लिए बहुत अच्छा संदेश। तो मैं हम सब भक्तों से कृपा की याचना करूँगा, विशेषकर परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोसाई महाराज जी से आशीर्वाद चाहते हुए। इस प्रहलाद महाराज जो असुर के पुत्रों को संदेश दे रहे हैं, वास्तव में हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी संदेश है। पिछले कुछ श्लोकों से प्रहलाद महाराज बता रहे थे असुर बालकों को कि कैसे उन्होंने माँ के घर में नारद मुनि जी से संदेश सुना और वो भक्ति की विधि की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहे थे, और साथ में ये भी बता रहे थे कि भक्ति की विधि का पालन करके किस प्रकार भक्ति की परिकाष्ठा भाव और प्रेम की स्थिति को भी प्राप्त किया जा सकता है। और फिर वो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि परम पुरुषोत्तम भगवान के लगातार स्मरण करने मात्र से हमारे मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं, आध्यात्मिक हो जाती हैं, और जब हम भगवान की सेवा में रत होते हैं तो हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, और उस दिव्य आनंद के आधार पर हम इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं। तो आज बता रहे हैं कोवती प्रयासा असुर बालका, जब हमें भगवान की सेवा में दिव्य आनंद मिल जाता है तो कोवती प्रयासा, इतना प्रयास क्यों करें, किसके लिए, जो अंतिम लाइन है, सामान्यता किम विषयोपपादने, इंद्रियों को इंद्रिय विषय जुटाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, अच्छा खाने के लिए, अच्छा सोने के लिए, सही मैथुन की सुविधाएं जुटाने के लिए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, कितनी सुविधाएं जुटाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, क्यों, कि हम सुखी हो जाएं। प्रहलाद महाराज पहले बता चुके हैं असुर बालकों, मेरे मित्र, केवल भगवान की सेवा में जुड़ने से इतना दिव्य आनंद प्राप्त होता है कि जन्म मृत्यु का चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। फिर कोवती प्रयास हो, क्यों इतना प्रयास करें, तो क्यों, हरि उपासना स्वहृदय, और भगवान की पूजा करनी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, भावार्थ लिख रहे हैं प्रभुपाद, कि भगवान की सेवा करना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में है, सबके हृदय में है, और छिद्रवत सता, और हमेशा ही रहते हैं, शाश्वत रूप से रहते हैं, जैसे कि आकाश। आकाश सब जीवों के लिए उपलब्ध है, हालांकि बहुत विस्तार है, लेकिन फिर भी सब जीवों के लिए उपलब्ध है, पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। इसी रंग से भगवान अशेष, यहाँ पे आया सख्यु अशेष देही नाम, सबके हृदय में है, लेकिन कोई जासूस बनकर नहीं, कोई गलती ढूंढने के लिए नहीं, कोई सजा देने के लिए नहीं, हमारे हितेशी बनकर। तो जब भगवान सबके हितेशी बनकर हमारे सबके हृदय में है और उनकी सेवा में जुड़ने से असीमित आनंद की प्राप्ति होती है, सेवा में जुड़ते ही जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो भाई, इंद्रियों विषयों को जुटाने के लिए, इंद्रियों के भोग के लिए क्या जरूरत है। फिर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति कितनी सरल है और नरक जाना कितना मुश्किल है, है ना। तो प्रहलाद महाराज जिस ढंग से प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचारकों को यही सीखना चाहिए, और इस श्लोक में हमें मनन भी करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मुझे अपने शिष्यों से दो तरह की शिकायत है, पहला एक कि माया से डरते नहीं है, और दूसरा इनकी आदत है कि चीजें बदलते रहते हैं। इसी तरह से इस श्लोक में बताया जा रहा है कि माया से डरना चाहिए, ये दिखने में बहुत आकर्षित लगती है, लेकिन बहुत बहुत दुख देती है। मदिरा पान करना, मांसाहार करना, कैसीनो में जाके जुआ खेलना, अवैध संबंध बड़े एक्साइटिंग लगते हैं, और इस संसार में कलयुग में जो जितने ज्यादा नियम तोड़ता है उसको उतना ज्यादा एडवांस माना जाता है, आधुनिक है, बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, उसको लोग उसकी नकल मारते हैं, वो हमारे रोल मॉडल है, सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत गट्स हैं इस व्यक्ति में, क्या क्या नहीं कर लेता ये, है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और होता क्या है, भक्ति में आने के बाद भी हम कई बारी 5-6 साल जब बीत जाते हैं तो हमें अपने पुराने दिन याद आना शुरू होते हैं। क्या वो दिन थे भाई, क्या हम भी पिक्चर देखा करते थे, हम भी क्रिकेट मैच एंजॉय करते थे, सड़क पे जाते जाते कुछ दिखाई दे गया पोस्टर तो हम भी चले गए भूतकाल में, हाँ हाँ वो पिक्चर देखी थी। तो हमें लगता है कि हम इंद्रगति को अब मिस कर रहे हैं, कोई भक्ति का सही ढंग से पालन करने से वो आनंद मिल नहीं रहा होता तो हम उस पुराने आनंद को मिस करना शुरू कर देते हैं। एंड देन वी चेंज थिंग्स, फिर हम बदलते हैं कुछ अपने भक्ति के नियमों को, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा समझौता कि आनंद भी यहाँ से ज्यादा आनंद है, हमारी श्रद्धा भक्ति के विधि में कम और भौतिक इंद्र तृप्ति में थोड़ी सी ज्यादा। प्रभुपाद कहते हैं यही मुझे शिकायत है अपने शिष्यों से, माया से डरते नहीं, थोड़ा सा छू लिया क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी एक्साइटमेंट हुई है ना, गुदगुदी हुई, अच्छा लगा, फिर छू लिया, फिर अच्छा लगा और फिर थक से ऐसा करंट लगता है खत्म, शॉर्ट सर्किट, ये होता है हम सबके साथ। तो ये बहुत सावधानी करने वाला श्लोक है और हमें इसे मनन करके भक्ति की विधि में दृढ़ता और भौतिक जगत की व्यर्थता और कृष्ण की कृपा की महिमा, ये तीन विषय है इस तात्पर्य के कि भक्ति की विधि कितनी महान है, इसके हमें इसमें हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, कृष्ण कितने कृपालु हैं और भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति कितनी व्यर्थ है। तो हर एक प्रचारक को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इस पर मनन करना चाहिए और साथ में खूब जोश से उत्साह से इसका प्रचार करना चाहिए बार 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 बार, क्योंकि भौतिक की जितनी वस्तुएं हैं बार 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 हमें कृष्ण को भुलाने का प्रयास करती हैं, जितने बिलबोर्ड्स हैं, जितनी पुस्तकें हैं, जितनी अखबारें हैं, हमें याद दिलाती हैं कि आप आत्मा नहीं शरीर हो। इसलिए प्रभुपाद अपना हर लेक्चर शुरू करते थे सो वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द सोल, तो हम कहते हो बार बार फिर प्रभुपाद वही बता रहे हैं, प्रभुपाद अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, हमें बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि नहीं भूलना मत कभी, ये सब भुला रहे हैं तुम्हें, मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूं तुम शरीर नहीं आत्मा हो, भूलना मत कभी मत भूलना। तो हमें भी बार बार मनन करना चाहिए भौतिक जगत कितना व्यर्थ है, इंद्र तृप्ति कितनी धोखेबाजी है और भक्ति कितनी महान है, भक्त कितने महान है, गुरु कितने महान है, शास्त्र कितने महान है और कृष्ण कितने कृपालु हैं। तो यहां बताया जा रहा है कि कृष्ण सभी के जीवों में है, सभी जीवों के हृदय में है। तो और बताया गया भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम श्रुता प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यम, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं, मैं शिष्य तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। तो अगर भगवान साक्षी हैं, हमें मालूम चल जाए कि हमारे हर एक क्रिया पर नजर रखी जा रही है, कैसा लगेगा किसी को कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके हर कार्य पर नजर रखता है, कैसा महसूस होगा किसी को, कंफर्टेबल महसूस होगा? और यहां तो भगवान बता रहे हैं मैं सब साक्षी हूं, एक एक काम देखता हूं आपका, एक एक इच्छा नोट कर रहा हूं। तो भगवान हम सबके हृदय में साक्षी बनकर इसलिए नहीं बैठे कि अभी पकड़ता हूं इसको गलती करते हुए और ऐसी सजा दूंगा मजा चखाऊंगा, भगवान इसलिए नहीं है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान इसलिए हमारे हृदय में बैठे हैं कि हम गलत कार्य करते हुए पकड़े ना बल्कि अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दें, इसलिए भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। फिर भी वो साक्षी हैं हमारे हर कार्यों के और ज्यादातर हमारे कार्य भगवान की शिक्षाओं के विरोध में होते हैं, फिर भी भगवान साक्षी इसलिए हैं ताकि उनको बहुत चिंता है हमारे, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो भगवान देखते हैं कि मैं सही कार्य करूं, इसलिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़े और मैं इसको सही आदेश दूं। आप कल्पना कीजिए कि बहुत अंधेरे की रात है और एक व्यक्ति एक अंधेरी गली में अकेले जा रहा है और सामने उसको दिखता है कि एक पुलिस वाला उसको देख रहा है, तो अंधेरी गली में आप अकेले हैं और पुलिस वाला सामने दिख जाता है, हम डरेंगे कि खुश हो जाएंगे? चोर होगा तो डरेगा और आम आदमी होगा तो सुरक्षित महसूस करेगा। और समझ लीजिए हमारे साथ में एक ऐसा मित्र है जिसको चोरी करने की आदत है, शराब पीने की आदत है और बार बार हमें उकसा रहा है, चल ना कुछ कर लेते हैं गलत काम, चल चल थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोई भी नहीं अंधेरे में, चल चल, और हमें मालूम है वो हमें उकसा रहा है गलत काम करने के लिए और सामने पुलिस वाला खड़ा है और हम करना भी चाहते हैं नहीं भी करना चाहेंगे, सामने पुलिस वाला है, नियम तोड़ते ही हमें सजा मिलेगी, और साथ में जो हमारा मित्र है हमें उकसा रहा है, तो उस पुलिस की उपस्थिति हमें क्या अनुभव, क्या महसूस कराएगी? हम गलत काम करने से हमें शक्ति मिलेगी कि हम उस अपने दोस्त को मना कर दे, नहीं नहीं आज मैं नहीं करूंगा गलत काम, ठीक है ना। इसी ढंग से ये अंधकार में, अज्ञान में, भौतिक जगत में हम अकेले हैं, और हमारा है जो गंदा मित्र है, दुष्ट मित्र, हमारा दुष्ट मन है, और हमारा मन हमें बार बार प्रेरित करता रहता है, क्या है गुरु की आदेश, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ी अवहेलना कर दो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़े नियम तोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। मन बार बार हमें उकसा रहा है, लेकिन अगर हमें यह ज्ञान है, नहीं मेरे परम मित्र, मेरे परम हितेशी कृष्ण मेरे हृदय में बैठे हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे शक्ति प्रदान होगी कि मान को बोला हट नहीं करना, चल नहीं मानूंगा तेरी बात, कही कृष्ण मेरे हितेशी हैं जो मुझे दूसरा आदेश दे रहे हैं। तो इस जग से कृष्ण हमारे हृदय में हैं, भक्त को अगर हमेशा इस बात को याद रखे तो अपने मन के जो उतार चढ़ाव को बहुत आसानी से वो सहन कर सकता है। कृष्ण की उपस्थिति का ज्ञान हमें शक्ति प्रदान करेगा कि हम मन की बात को ना माने। कृष्ण हमारे हृदय में है, कृष्ण का हृदय में रहने का केवल साक्षी रहने का ही कार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी हम मन की बात मान के कुछ पाप करें या कुछ नियम तोड़ें तो भगवान बाद में हमें दोष देंगे या हमारी आलोचना करेंगे, नहीं भगवान ऐसा नहीं करेंगे। जबकि भगवान तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, वो फिर से मौका देंगे और देखेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि ये व्यक्ति कब मेरे आदेशों का पालन करना शुरू करेगा। तो भगवान हमारे हृदय में केवल साक्षी बनकर ही नहीं बैठे हैं, भगवान के गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कहते हैं, सर्व से चाह मृदि सन्विष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। अगर हम भगवान को याद करना चाहते हैं तो प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि हृदय के अंदर ही स्थित है। श्री श्री राधा राधिकानंद जी की जय, बहुत आसानी से भगवान ने अपने दर्शन दे दिए। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो भगवान, अगर हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से उपलब्ध है, हमारे हृदय में स्थित है, और अगर हमको भूलना चाहते हैं तो भगवान बहुत आसानी से हमें भुला भी देते हैं। आप हम कर सोचे अगर कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है ना, और उसकी प्रेमिका बोले उसको नहीं मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, और प्रेमी बोले ओके नो प्रॉब्लम भूल जाओ, संभव है ये? नहीं, उसको कितनी कुंठा होगी, कितना गुस्सा आएगा। लेकिन ये भगवान का वैराग्य का ऐश्वर्य है, अच्छा मैं भूलना चाहते हो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं भूल जाओ। भगवान सारी सुविधाएं देते हैं उनको भूलने के लिए, स्वयं देते हैं सुविधा उनको भूलने के लिए, ये भगवान की महानता है, और फिर चुपचाप प्रतीक्षा करते हैं। ये असली प्रेम है उसके, भगवान हमारी इच्छा से बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये जीव के ऊपर निर्भर है कि वो भगवान को कैसे पुकारे, हे भगवान मैं आपको भूलना चाहता हूं, तुरंत भगवान भुला देंगे, हे कृष्ण मैं तुम्हें याद करना चाहता हूं, तुरंत भगवान उपस्थित हो जाएंगे। बस केवल हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उनको भूलना चाहते हैं या उनका स्मरण करना चाहते हैं। ये हमारे हृदय में समझ लीजिए दो तरह के बटन है, एक लाल रंग का, एक हरे रंग का। लाल रंग का दबाएंगे भूलना है, हरे रंग का दबाना है याद करना है। जैसे लाल रंग का दबाएंगे सारा का सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हरे रंग का दबाएंगे वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बस अगर हम इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं तो हमें भगवान को भूलना होगा। अगर हमें मालूम है कि कण कण में भगवान है, सब कुछ भगवान से संबंधित है, तो कोई हम भोग ही नहीं कर सकते। जैसे एक सामने के पड़ोस के घर में जाकर हम उनके डेवलपर पे लेट नहीं सकते आराम से, है ना, फ्रिज खोल के आराम से कोल्ड ड्रिंक पिए, किचन में जाके कुछ खा लें, नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भूला नहीं कि ये मेरा घर नहीं है, ये पड़ोसी का घर है, मैं जानता हूँ इसका मालिक कोई है, मैं उसके घर में थोड़ी घुसूंगा। लेकिन अगर इसको भूल जाए, ईशावास्य एकदम सर्व सब कुछ भगवान का है, तो क्या है हम कहीं भी भोग करना शुरू कर देंगे, है ना। तो जब हम भोग करने के ये स्विच दबाएंगे तो ये भौतिक प्रकृति हमके शरण में आ जाएंगे, भौतिक प्रकृति के आप प्रभाव में आ जाएंगे, और जब हम भगवान की सेवा करने का बटन दबाएंगे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे। भगवान की कृपा से ये बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति में बदल जाती है। केवल हमारी इच्छा पर निर्भर करता है हम कौन सा बटन दबा रहे हैं। बहिरंगा शक्ति मतलब लाल बटन, तीन तरह के ताप, खूब पिटाई, है ना। अंतरंगा शक्ति राधा रानी की शरण शीतल, निताई पद कमल कोटि चंद सो शीतल, ये हमारे पर निर्भर करता है हमने कौन सा बटन दबाना है, और भगवान ऐसी सुविधा प्रदान कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, नहीं प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, बहुत ही आसानी से उपलब्ध। इस संसार के किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से अगर हमें मिलना हो तो कितनी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कांक्षत कर्मणाम सिद्धि जयंत इह देवता, कि अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दो देवताओं के शरण में जाते हैं, और उसमें लिखे इह देवता। इह देवता मतलब ये देवता लोक जो है इसी लोक के हैं, इसी संसार के हैं, इसी भौतिक जगत के हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि देवता लोक वो कैदी हैं जिनका व्यवहार बड़ा अच्छा है और लंबे समय से कैद में, सीनियर प्रिजनर्स। अगर हम कभी जेल में जाएं किसी भी कारण से तो हम देखेंगे कि जो किचन इंचार्ज होता है, जो क्लीनिंग इंचार्ज होता है और जो टॉयलेट इंचार्ज होता है वो सब सीनियर प्रिजनर्स होते हैं, और वो लगेगा कि नहीं वो जेल के ऑफिशियल, वो जेल के ऑफिशियल नहीं है, 35 साल 25 साल की जिनको सजा मिली हुई है और जिनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, जेल की अथॉरिटीज का आज्ञा मानते हैं, तो वो देवता लोग वैसे हैं। और मेस का इंचार्ज है, खाना बांट रहे तो थोड़ा अपने लिए ज्यादा अच्छा खाना रख लिया, भोग भी कर लिया और बांट भी दिया, काम भी कर लिया। तो देवता लोगों की ये मानसिकता है कि खूब बांट भी दिया सबको, भगवान का कार्य भी कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन का और थोड़ा सा भोग भी कर लिया। तो ये सीनियर प्रिजनर्स हैं। इह लोक का जनते इह देवता, इह का मतलब इसी संसार के हैं, लेकिन उन देवताओं के पास जाने के लिए भी बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर्मकांड यज्ञ करके तब उन देवताओं के लोक में कोई जा पाएगा। देवताओं के लोक तो छोड़ो, प्रभुपाद कह रहे हैं नर्क में पाताल लोक में जाने के लिए भी बड़े बड़े पाप करने के लिए भी बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन जो भगवान है नारायण है पराव्यक्ता, जो इस भौतिक जगत से परे हैं वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है, जो बहुत दूर है लेकिन बहुत नजदीक भी है, जैसे कि ईशोपनिषद में बताया गया है। अगर भगवान बहुत दूर हैं तो वो पूर्ण नहीं हो सकते, अगर भगवान बहुत महान हैं तो भी पूर्ण नहीं हो सकते। बहुत दूर होंगे तो बहुत नजदीक भी होने चाहिए, बहुत बड़े हैं तो बहुत छोटे भी होने चाहिए, तभी तो वो पूर्ण है ना। बहुत सुंदर हैं तो बहुत घिनौने रूप वाले भी होने चाहिए, जैसे उनका जो उन्होंने विश्व रूप दिखाया बहुत भयंकर रूप, तो तभी तो भगवान पूर्ण है। तो इतने दूर है, इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे हैं, लेकिन बहुत नजदीक हैं, हमारे हृदय में हैं। तो कितना सरल है भगवान को, और भगवान को कांटेक्ट करना क्या है, बहुत सरल है, बस क्या बुलाना है, भगवान को पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक है जिसमें कि प्रचेतस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रचेतस कह रहे हैं नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरि मेदसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्व सात्वताम। इसका अर्थ सुनिए, हे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। विशुद्ध सत्वाय पूर्ण भौतिक प्रभावों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। ये जो शब्द है हरि मेद से, इसका शब्दानुवाद प्रभुपाद जी ने किया जिसका मस्तिष्क बद जीव के उद्धार हेतु कार्य करता है। भगवान का मस्तिष्क केवल बद जीव के उद्धार हेतु कार्य करता है। One whose brain is always working for delivering the conditioned souls, English में प्रभुपाद लिखते हैं। भगवान का दिमाग हमेशा यही सोच रहा होता है कि बद जीवों का उद्धार कैसे करना है, इसलिए उनका नाम है हरि मेद से। ये भगवान इतने कृपालु हैं। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं, और इतने दयालु हैं भगवान कि भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद विदेश में गए, विध अवस्था में उनके प्रभाव को बढ़ाया। अगर हम भक्ति शून्य करना शुरू करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, प्रचार कार्य में जुड़ते हैं, तो भगवान भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। किसी प्रचारक को ये नहीं सोचना चाहिए देखो मेरा प्रभाव कितना बढ़ रहा है। अगर प्रभाव बढ़ रहा है तो कौन बढ़ा रहा है? भगवान भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो ये भगवान के संपर्क में आना, प्रभुपाद कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम, जैसे ही हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जैसे इस समय हम भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो हम भगवान के संपर्क में साक्षात साक्षात। और ये भगवान का श्रवण कीर्तन करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ये सबके लिए उपलब्ध है। हम देखते हैं सुबह सुबह 7:30 बजे हमारे मंदिर में कुछ नए लोग आ जाते हैं मॉर्निंग वॉक करके, शॉर्ट्स डाल के आराम से, कुछ लोग बिना नहाए भी आते हैं, आगे चलो जी आराम से, और देखा क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली बार ही आया है प्रभुपाद जी, अच्छा सब लोग प्रणाम करें, चलो मैं ही प्रणाम कर देता हूँ, प्रणाम कर देते हैं, अनजाने में भक्ति शुरू हो गई, किसी ने उनको फूल पकड़ा दिया है, क्या करना है, दाओ यहाँ पे, चले खड़े हो गए लाइन में, फूल डाल दिए, अब क्या करना है, पैर हाथ लगा दिया, सब झुक रहे, फिर प्रणाम करें, फिर प्रणाम कर दिया, किसी ने भक्त चंदन लगा दिया, अरे क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो देखते ही रहते आसपास है ना, और फिर देख रहे कोई आया आरती लेके आया, सब कर रहे हैं यूं कर दिया, बड़ा अजीब सा उसको लग रहा था, सब नाच रहे हैं वो भी नाचना शुरू कर देता है, भक्ति शुरू हो गई उसकी। वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, यहां आते ही उसकी भक्ति शुरू हो गई। तो भक्ति इतनी सरल है कि इसलिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज को माँ के गर्भ में ही नारद मुनि सुना रहे हैं संदेश, उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, अरे बच्चा तो पैदा होने दो भाई, छोटा बच्चा है यार, ठहर जाओ बच्चे को तो पैदा होने दो, थोड़ा सा बड़ा होता है 5-6 साल कुछ तो समझ आए, लेकिन नारद मुनि ने प्रतीक्षा नहीं की कि पहले बच्चा पैदा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब सुनाऊंगा तुरंत। तो भक्ति करने के लिए हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ये हो जाए फिर करेंगे, मेरा अभी बिजनेस थोड़ा सेट हो जाए फिर मैं रोज आऊंगा मंदिर मंगल आरती में, अभी प्रभु जी पूरा प्लानिंग चल रहा है ना, वो प्लानिंग चलता ही रहता है, जीवन समाप्त हो जाता है। भक्ति तुरंत, सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अभी नहीं लूंगा सांस, थोड़ा बाद में लूंगा, फुर्सत में सांस लूंगा, नहीं सांस लेना नेचुरल है, जीव के लिए भक्ति करना वैसी है जैसे सांस लेना, तुरंत लेना है सांस, भक्ति करनी है। नारद मुनि प्रतीक्षा नहीं की, तुरंत उपदेश दे दिया। बाकी छोटे से छोटे कार्य के लिए हमारे को कुछ योग्यता चाहिए, वोट देने के लिए कम से कम 18 साल का होना चाहिए, विवाह करने के लिए भी कम से कम 21 साल का होना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन देने के लिए भी कुछ एजुकेशन कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए है ना, पिक्चर देखने के लिए भी टिकट चाहिए, और यहां परम पुरुषोत्तम भगवान का संदेश सुनने के लिए फ्री, आप बैठे हो फ्री में, और सुनने के लिए यह भी नहीं है कोई आसन में बैठना है, जो कर्ण है वो श्रोत वक्ता के लगभग 60 डिग्री के कोण में होने चाहिए, ऐसा नहीं है है ना, कि जो भी बैठे हो कम से कम सबके सर मुड़े हुए हो ताकि वक्ता को डिस्ट्रैक्शन ना हो बाल देखकर, ऐसा नहीं कोई बोला जा रहा, कोई कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, पेंट शर्ट डाल के आइए, धोती कुर्ता डाल के आइए, हिप्पी बन के आइए, गंजे होके आइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आए चुपचाप बैठ जाए सुन ले, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए भक्ति। और दूसरा, कोई भी बड़े से बड़ी अयोग्यता रखे वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हो गया, रत्नाकर डाकू का उद्धार हो गया, जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, जब जगाई मदाई का उद्धार किया सभी देवता भावेश होकर नाचने लगे और सभी भक्त नाच रहे हैं, तब अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर से कहते हैं मुझे मालूम था इन शराबियों का उद्धार एक शराबी ही कर सकता है, और ये सबसे बड़े शराबी थे नित्यानंद प्रभु है ना, ये खुद पिए रहते हैं हमेशा, भगवत प्रेम का इन्होंने नशा किया हुआ है, तो एक नशेड़ी व्यक्ति ही नशेड़ियों का उद्धार कर सकता है। और इन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि वो जगाई महाराज जब उस नाच रहे थे तो उनको लग रहा था यार इतना नशा तो कभी भी नहीं आया, तरह तरह की हमने मदिरा पी ऐसा नशा कभी नहीं आया जो इस हरे कृष्ण के कीर्तन में आ रहा है। तो जब इतना वो नाचे और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन कर लिया तो गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए, पूर्ण रूप से काले हो गए है ना, पूर्ण रूप से काले हो गए, क्यों, क्योंकि सारे के सारे पाप जैसे यहां बता रहे हैं प्रचेतस कह रहे हैं सारे क्लेशों को हर लेते हैं, गौर सुंदर जी ने भगवान ने उनके सारे के सारे पाप ले लिए। और जब लगातार कीर्तन चलता रहा उसके बाद चैतन्य महाप्रभु दोबारा गौरांग वर्ण के हो गए, तो भक्त ने पूछा महाप्रभु ये क्या लीला है, ये आप दोबारा से गौर बन के कैसे हो गए, तो काला रंग कहां गया, तो फिर महाप्रभु ने बोला कि वो काले जो सारे पाप थे उन भक्तों के पास चले जाएंगे जो दूसरे वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, तो अगर हम वैष्णव के प्रति सही व्यवहार नहीं करते, उनके प्रति अपराध करते हैं, तो जगाई मधाई ने जो बड़े बड़े पाप किए थे वो सारे पापों का बोझा हमारे ऊपर आ जाता है। और जब पाप हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन बड़ा पाप हो जाता है, पाप का पहले बीज जाता है और बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और फिर एक बड़े दिन वो फूटकर बाहर निकलता है। हम सोच रहे नहीं, हमने तो बड़ी निंदा की पिछले 25 साल से, मैं तो निंदा कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक है, पाप का बीज अंकुरित हो रहा है और कभी भी फट सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई ने बड़े बड़े पाप किए, सारे पापों का बोझा उन भक्तों में चला जाता है जो दूसरे भक्तों से दुर्व्यवहार करते हैं। तो भक्ति बहुत ही आसानी से की जा सकती है, और भक्ति केवल श्रवण। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में यही कह रहे हैं कि अगर कोई अपने स्थान पर स्थित होते हुए, सामाजिक जो उसकी स्थिति उसमें स्थित है, अपने मन वाणी और शरीर से भगवान को नमस्कार करते हुए भगवान के संदेशों को सुनता है, तो अजीत भगवान को भी वो जीत लेता है। भगवान इतने आसानी से उपलब्ध हैं। ज्ञानी और योगी ये दावा नहीं कर सकते, और भक्ति कितनी इंजॉयबल है। श्रील प्रभुपाद एक बार ये चर्चा कर रहे थे ज्ञानी और योगियों के विषय में, और तभी प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपना वो जार खोला जिसमें अपने उनके हाथ के बनाए हुए बड़े बड़े रसगुल्ले थे, वो टेनिस बॉल के इतने बड़े, उठाया स्पंज से और सीधा मुंह में डाला। प्रभुपाद बोले लेट देम डू एनीथिंग, विल ईट अवर वे टू वैकुंठ। हम तो खाते खाते ही आध्यात्मिक जगत में चले जाए हैं, उनको जो करना है करने दो। तो ये इतना सरल है। दूसरा, भक्ति की सहजता कैसे हो जाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय में, जब वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं मेरी आयु कितनी बड़ी होगी, मैं चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीला का वर्णन कर पाऊंगा नहीं, तो इसलिए वो संक्षेप में वर्णन करते हैं और बाद में लिखते हैं, ना ही कहां सविरोध ना ही कहां अनुरोध, सहज वस्तु करी विवरण, यदि है रागो देश तहां है आवेश, सहज वस्तु ना जाए लिखना। इस चैतन्य चरितामृत में ना तो कोई विरोधात्मक निर्णय है, ना ही किसी अन्य की मत को स्वीकृति दी गई है। मैंने ये पुस्तक उन सहज विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए लिखी है जिसे मेरे गुरुजनों ने सुना है। ये सहज वस्तु है, भक्ति सहज वस्तु है, और इसका वर्णन मैं किसी और के मत के अनुसार नहीं कर रहा, उसके अनुसार कर रहा हूं जो मैं अपने गुरुजनों से सुनी है। भक्ति करना इसलिए आसान है, प्रभुपाद लिखते हैं, अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई निर्णय कर पाना सरल काम नहीं है। अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम कोई भी डिसीजन लेते हैं सरल काम नहीं है, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे ठीक है कि गलत है। और एक डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है नहीं नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। छोटी जगह मॉल में भी जाते हैं आजकल, कम से कम 500 तरह के तो टूथपेस्ट हैं, है ना। आप जाओगे सबके सब आप पे हंस रहे हैं दाम दिखा के, ये खरीदूं या ये खरीदूं या ये खरीदूं या ये खरीदूं, ये खरीदो तो बोला हम बहुत ज्यादा अच्छे थे। गाड़ियां इतनी आ गई हैं आजकल, कार्स, कौन सी गाड़ी लूं, पूरे घर में लड़ाइयां होती रहती हैं। बच्चा कहता है पापा वो गाड़ी लो, बेटी कहती वो गाड़ी लो, समझ नहीं आती कौन सी गाड़ी लें। एक गाड़ी ले लेते हैं बोले वो गलती हो गई, वो लेनी चाहिए थी, है ना। फिर इसको बेचेंगे 2 साल फिर नई गाड़ी लेंगे, नहीं 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 वो लेनी चाहिए थी। तो अपनी इंद्रियों से निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भक्ति में क्या निर्णय लेना है, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया वैसा करो, सहज, बहुत ही आसान है। और चौथा, भक्ति करना इसलिए सरल है कि हम अकेले नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, पूरी की पूरी गुरु परंपरा हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। भक्ति करना माया के प्रति युद्ध है, लेकिन हम अकेले युद्ध नहीं कर रहे, सभी भक्तगण हमारे साथ हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम 16 माला का जप कर रहे हैं तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को हमारे मन पता ही नहीं होगा, हम तो कभी मिले नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से, उनको पता होगा मैं 16 माला का जप कर रहा हूं। रूप गोस्वामी जानते हैं मेरे को, हाँ सभी सब षट गोस्वामी सभी आचार्य हमें जानते हैं, हम उनके निरीक्षण में ये आंदोलन चल रहा है। तो हम अकेले नहीं हैं, सारा का सारा गुरु वर्ग हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। लेकिन अगर हम भौतिक इंद्र तृप्ति करते हैं, हम हमेशा अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं। भौतिक इंद्र तृप्ति में या तो हैंकरिंग रहेगी यानी कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, या हम शोक करते रहेंगे या फिर डरे रहेंगे। रशिया के एक बहुत बड़े लीडर थे स्टालिन, नाम सुने आपने, बहुत ही क्रूर थे स्टालिन। स्टालिन पूरी रशिया को उन्होंने अपने वश में किया हुआ था और उनकी एक पूरे मंत्रियों की कैबिनेट थी, तो जो जिस लोग को वो मंत्री बनाते थे कुछ समय के बाद उसको शूट कर देते थे, क्योंकि उसको डर था ये ज्यादा शक्तिशाली बन गया तो मेरे को भी हटा देगा। तो सब मंत्रियों को लाते थे कैबिनेट में और फिर सबको शूट कर देते थे, फिर नए लोगों को मंत्री बनाते थे। और बेवकूफ देखो, जो नए लोग मंत्री बनते थे उनको मालूम है पुराने मंत्री मार दिए गए हैं, फिर भी वो नए लोग मंत्री बनते थे। उनको लगता था नहीं नहीं मेरे को इस पर ज्यादा विश्वास है, मुझे नहीं मारेंगे, फिर उनको भी मार देते थे। यानी कि इतना बड़ा लीडर लेकिन इतना बड़ा भयभीत, ये बहुत ही जगत है। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा असुर, सब लोग उससे कांपते थे, लेकिन एक भक्त प्रहलाद के आगे वो डर रहे हैं। तो भक्ति में हम सुरक्षित हैं, सभी किस कृष्ण भी हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और सभी आचार्यगण हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भक्ति भी हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। और भक्ति छोड़कर हम इंद्रद्वीति की तरफ जाते हैं बहुत असुरक्षित हैं, डर ही लगा रहेगा हमेशा, और कुछ भी करेंगे नहीं ये नहीं वो करना चाहिए था, ये हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ, प्राप्त हो गया तो कोई मुझसे छीन ना ले, ये जद्दोजहद चलती रहती है। फिर लोग हमें बताया जा रहा है भक्ति इतनी सरल है, क्या करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को कुछ भोग लगाओ। प्रभुपाद जी कह रहे इतनी सरल विधि से हम भगवान के सनातन धाम को प्राप्त कर सकते हैं, इतनी सरल विधि, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को प्रेम से भोग लगाए भगवत धाम चला जाए, इतनी बड़ी बात है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारे के लिए केवल यह प्रयास करना है बस। तो कोई कह सकता है आपको क्या लगता है भक्ति करना इतना आसान है, प्रभुपाद जी से लिखना इतना आसान है, तो आप लोग अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या है कि भक्ति करना बहुत आसान है कि मुश्किल है, कैसा अनुभूति हो रही है आपको कुछ सालों के बाद? मुश्किल क्वेश्चन है कि आसान क्वेश्चन है? कहते हुए बनता नहीं, क्या बोले बताइए, भक्ति करना मुश्किल है कि आसान है? आसान है लेकिन समझ नहीं आ रहा। ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहां वो कह रहे हैं कोति प्रयासा, कोई प्रयास की मत करो, तो ऐसा नहीं कि भक्ति में भी प्रयास नहीं करने, सततम कीर्तियोत्तम यतन तश्च दृढ़ता, यतन तो करना ही पड़ेगा दृढ़ता के साथ, है ना। और खासकर सुबह जल्दी उठना, माला का जप करना, चार नियमों का पालन करना, यतन करना पड़ता है, और विशेषकर सुबह मंगल आरती के बाद मच्छरों के बीच में जप करना। तो प्रयास भक्ति में भी करने पड़ते हैं और प्रयास भौतिक जगत में भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में हमें सुनने के बाद आप छोड़ो सब दुकान बंद, आप ऑफिस में ही भक्ति करेंगे। इतनी बुद्धि हमें रखनी चाहिए कि शरीर के पालन के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन हमें जो शिक्षा दी जाती है कि शरीर के पालन के लिए भी हम इस ढंग से कार्य करें कि वो भी भक्ति में हो जाए, तो भक्ति के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। एक बार प्रभुपाद से किसी शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत में क्या मच्छर है ना? तो प्रभुपाद बोला हाँ हो सकते हैं, लेकिन वहां काटेंगे नहीं, वहां ओडोमॉस नहीं लगाने पड़ेंगे। तो भक्ति के लिए निश्चित रूप से हमें प्रयास करने हैं। हमारे लिए भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं रह पाता क्योंकि हम भौतिक जगत में और हम इतने अनादिकाल से भगवान को भूले हुए हैं, इसलिए हम भक्ति पूर्ण रूप से इतनी हमें आसान नहीं लगती। जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, साइंस में, कि किसी भी पदार्थ के अंदर से जो करंट है उस मात्रा में वो बहेगा निर्भर करता है कि उस पदार्थ की रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो करंट बहता है तांबे से या एल्युमिनियम से, है ना, और लकड़ी से करंट नहीं बहता, क्योंकि लकड़ी की रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रतिरोध समझ लीजिए, प्रतिकारक क्षमता, तो वो ज्यादा है तो उसमें करंट नहीं बहता। इसी ढंग से भगवान सर्वत्र उपलब्ध हैं, भगवान की कृपा सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन हमारे हृदय में कृपा तभी संचारित होगी, निर्भर करता है कि हमारे हृदय में कितनी रेजिस्टेंस है ना। अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो कृपा नहीं आएगी, अगर खोल के रखेंगे हृदय भगवान के लिए तो निश्चित रूप से कृपा आएगी। तो हमारी रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कैसे होती है हमारे हृदय में, जो कृपा का संचार नहीं होने देती, इस भौतिक प्रकृति का प्रभाव। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद उसमें बताते हैं दो तरीकों से हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिससे ये भौतिक प्रकृति भी हमारे लिए अंतरंगा शक्ति बन जाएगी। तो उन्होंने बताते हैं प्रभुपाद, पश्चाताप और तपस्या। पश्चाताप और तपस्या करके हम इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बच सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। पश्चाताप क्या हुआ, हमसे गलती हुई, पश्चाताप तभी करेंगे, गलती हुई कि हम कृष्ण को भूले, तो पश्चाताप होगा कि कृष्ण का स्मरण करें। तो हमारे लिए कृष्ण का स्मरण होता है कम से कम 16 माला का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये पश्चाताप होगा। और तपस्या क्या है, तपस्या है कि दोबारा से पाप ना करें, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई मथाई का उद्धार किया, मतलब दोबारा से और कोई पाप नहीं, तो हमें और कोई पाप नहीं, यानी कि चार नियमों का सख्ती से पालन। तो अगर हम ध्यान पूर्वक 16 माला का जप कर रहे हैं और चार नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पर भौतिक प्रकृति का प्रभाव धीरे 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 कम हो जाएगा, और ये भौतिक प्रकृति भी हमारे लिए अंतरंगा प्रकृति बन जाएगी, और फिर भक्ति करना बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर हम वास्तव में भक्ति आसानी से और स्पॉन्टेनियसली सरलता से सहजता से करना चाहते हैं, तो हमने ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकृति का प्रभाव अपने ऊपर रखना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और श्रवण करके हम क्या कर रहे हैं, हम भौतिक प्रकृति से अंतरंग प्रकृति के प्रभाव में जा रहे हैं। भक्तों के संग में आकर हम क्या कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति से अंतरंगा प्रकृति के प्रभाव में। और भौतिक प्रकृति के प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करके और चार नियमों का सख्ती से पालन करके, और वास्तव में यही दीक्षा की विधि है। तो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने का अर्थ है कि हमारे ऊपर भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम हो, और फिर हम भक्ति बहुत आसानी से, भक्ति का मार्ग हमारे लिए स्वाभाविक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन पाप करने के लिए, नर्क जाने के लिए बहुत तामझाम जुटाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए भी कंपटीशन है ना, कोई कितने नियम तोड़ सकता है ना, देखा देखी में। इसी को समाज की प्रगति मानी जा रही है, लेकिन वास्तव में प्रगति क्या है कि अपनी चेतना को उत्कृष्ट करें, भौतिक प्रकृति के प्रभाव को हमारे ऊपर जो है उसको हम कम करें। तो इस श्लोक में प्रभुपाद हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। कई बार हमारे को यह संदेह रहता है कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं शुद्ध तो हो नहीं रहा, हमारा विश्वास भक्ति इतनी सरल है, सुना तो है, नहीं कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, उतना ही मुझ में क्रोध है, उतनी ही काम वासनाएं हैं, ये क्या हो रहा है। तो हम इसमें एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि किसी ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे पानी नहीं आता, है ना, बस दिन में 1 घंटा पानी आता है, उसके बाद पानी बंद, और बाद में पानी आता है नलके से टप टप करके, एक एक बूंद गिरती है। अगर उस नलके के नीचे हम किसी बाल्टी को रखते हैं और एक एक बूंद करके टप टप गिर रही है और उसको गिरने दें, तो कुछ समय के बाद क्या देखेंगे कि बाल्टी में काफ़ी पानी भर गया है। और अगर कोई व्यक्ति वहीं खड़ा देखता रहे टप टप टप, थक जाएगा, क्या है यार कुछ नहीं हो रहा, है ना। अभी कह रहे बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं, बोले आप यहीं बैठे रहो 12 बजे तक, वो देखते रहो घड़ी को, अच्छा कब 12 बजेंगे, कब 12 बजेंगे, हमें कुछ नहीं हो रहा है ना। अगर हम 12 बजे का अलार्म लगा दें तो 12 बजे आ सकते हैं, टप टप कनकने दें उसको, बाद में बाल्टी भर जाएगी। इसी ढंग से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, अनादिकाल से हमने भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन अब धीरे 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 हो रहा है, तो हमें लगता कुछ नहीं हो रहा, पानी तो गिर नहीं रहा, टप टप गिर रहा है बस, नहीं, हम इस विधि में लगे रहें और ये शुद्धिकरण होता रहेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है, हमने एक बैंक अकाउंट में हमारे पैसे कुछ रखे थे, फिर हमने दूसरा मेन बैंक अकाउंट खोल दिया, पुराने बैंक अकाउंट में कोई 2-3 हज़ार रुपये रखे थे, हम भूल ही गए। अब भूल गए इसका मतलब ये थोड़ी कि बैंक उसको इंटरेस्ट नहीं देगा, बैंक लगातार उसको इंटरेस्ट दिए जा रहा है, हमें मालूम भी नहीं है, और इंटरेस्ट चलता जा रहा है, और बाद में कभी स्टेटमेंट आती है, अरे इतने पैसे हो गए, मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो भूल गया था। उसी ढंग से जब इस भौतिक जगत में बिना हमारे ज्ञान के बैंक हमें इंटरेस्ट दे सकता है, हम भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें हमारा लाभ हो रहा है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। तो अगर हम सख्ती से हम नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। और जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हर जीव में, हर वस्तु में भगवान उपस्थित है। प्रभु जी यही बता रहे थे, जब यहाँ होते हैं तो हम समझते हैं कि सब कुछ भगवान का है, बाहर जाते ही हम सोचते हैं सब कुछ हमारा है और हम भोगना शुरू करते हैं। लेकिन हम बाहर भी जाएं तो भूले नहीं कि सब कुछ भगवान का है, ये मेरे भोग के लिए नहीं है। इसकी हम प्रैक्टिस करें, जब इसका हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हर वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। हो सकता है पहले किसी फूल को देखा, पेड़ में अच्छे फूल हैं, तो किसी को अपनी प्रेमिका की याद आए, अब हमें कोई फूल दिखाई दे तो किसकी याद आनी चाहिए, राधा राधे रमन जी की याद आनी चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस की बात है, कैसे हम धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और भौतिक प्रकृति के प्रभाव से अंतरंगा प्रकृति के प्रभाव में आ सकते हैं और भक्ति को बहुत सहजता से कर सकते हैं। तो आज के श्लोक से हम ये सीखते हैं कि इस भक्ति कितनी आसान है और कृष्ण कितने कृपालु हैं, किस ढंग से कृष्ण हमें हर सुविधा प्रदान कर रहे हैं, कितने आसानी से हम कृष्ण के संपर्क में आ सकते हैं। जब भगवान के विषय में रुक्मिणी देवी नारद मुनि से सुनती थी तो सुनते सुनते ही, सुनने मात्र से ही रुक्मिणी देवी को कृष्ण से आकर्षण हो गया। और जब सबके सब राजा उनसे, जरासंध, शिशुपाल इत्यादि इकट्ठे हो गए, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से निर्धारित हो गया, तो रुक्मिणी देवी जी की उम्र बहुत कम थी, 10-12 साल की एक छोटी सी बालिका थी, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण का श्रवण कर रही थी उन्होंने साहस नहीं खोया और तुरंत एक चिट्ठी लिख दी और ब्राह्मण को भेज दिया, जाओ कृष्ण के पास चिट्ठी ले जाओ। कभी कृष्ण से मिली भी नहीं, जानती भी नहीं, बस सुना था। और जब ब्राह्मण वो भगवान के पास पहुंचे और ब्राह्मण ने चिट्ठी पढ़ी तो भगवान कहते हैं, मैं तो बहुत खुश हूं कि रुक्मिणी मुझसे इतनी उत्सुक है विवाह करने के लिए। उन्होंने ब्राह्मण को हाथ को पकड़ लिया और अपने मन की बात कही, मैं भी रुक्मिणी से बहुत आकृष्ट हूं और तुम्हें बताऊं कहीं रात में सो भी नहीं पाता रुक्मिणी के स्मरण में। ये देखिए, अगर हम यहाँ शाहरुख खान के बारे में सुन रहे हैं, शाहरुख खान को पता भी नहीं होगा कि मेरे बारे में कोई सुन रहा है, कोई मेरा गुणगान कर रहा है ना। हम उसको संदेशा भी भेजते हैं, शाहरुख खान आओ मेरे बचाओ, कौन है भाई, क्या है, टाइम नहीं है, जाओ यार क्या बात कर रहे हो। लेकिन भगवान ने इस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया, बोले मैं भी कई बार सो नहीं पाता रुक्मिणी के स्मरण में, ये भगवान है। द्रौपदी के ऊपर कष्ट आया, तुरंत गोविंद कह के पुकारा और भगवान तुरंत आ गए। तो कृष्ण उपलब्ध है हमारे लिए, हमें नहीं भूलना चाहिए। जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये कोई औपचारिकता नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह जप नहीं करना चाहिए। क्या है, काम करना है 2 घंटे, चल भैया काम करो, प्रसाद तभी मिलेगा, ठीक है, हरे भैया सरकारी नौकर हूँ भैया, काम कर दिया, प्रभुपाद जी के आंदोलन में कुछ तो करना ही पड़ेगा, चल दिया सलाम। नहीं, ये बहुत सुंदर मौका है भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने का, बहुत सुंदर मौका है, इंटीमेट कॉन्टेक्ट, केवल मैं और राधा कृष्ण बस। और हर तरह के लोग योग्य हैं इसमें, जो भगवान का नाम नहीं भी पुकार सकते। अब चाइनीज लोग हरे नहीं बोल सकते, हले बोलते हैं, हले कृष्ण हले कृष्ण। तो राधा रानी यही बोली, मुझे थोड़ी पुकार रहे हैं, मैं थोड़ी सुनोगे, नहीं राधा रानी कही नहीं मुझे ही पुकार रहे हैं, हले हैं तो कोई बात नहीं, हले हरे एक ही बात है। तो चाइनीज कोई भी हो, किसी भी जात का हो, भगवान को पुकार सकता है, भगवान को केवल प्रेम चाहते हैं बस। तो हमें इतना ये ज्ञान किसी को भी नहीं मिलेगा, बड़े से बड़ा पीएचडी वाला व्यक्ति भी नहीं समझता है क्या है ये, इतनी आसानी से। हमें आदत पड़ गई कलयुग में, जब किसी चीज को बोले थे बहुत महंगी है तो हम सोचते हैं बहुत अच्छी होगी, और देखते हैं फ्री मिल रही है या सस्ती है, बेकार होगी, सब स्टैंडर्ड हो गए। लेकिन आपका सबका अनुभव होगा, कहीं बड़ी महंगी चीज लेते हैं तो बाद में बोलते हैं बेकार, एकदम खोदा पहाड़ निकले चुका है ना, है किसी का अनुभव? जैसे खासकर कोई 5-star होटल में जाए, बोले यहाँ जाके आप खा के आते हैं, कोई बॉयल्ड सब्जी देंगे 500 रुपए की है, क्या है, कुछ भी टेस्ट नहीं आया, बेकार, ऐसे अपना ढाबा अच्छा था यार, शाही पनीर खाते बढ़िया एकदम, ये क्या है, बेकार से खिला दी, 500 रुपए भी दे दिए, वो 20 रुपए की प्लेट थी, है ना। होता है एक्सपीरियंस, कोई नाम इतना बड़ा था, अपने स्टेटस दिखाने के लिए हम चले जाते हैं, महंगी चीज कोई अच्छी होगी। भक्ति इतनी आसानी से मिल रही है, क्या नाचो गाओ और चले जाओ, क्या है, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, इतने योगी पागल है क्या, इतने बड़े भी कर रहे हैं। हम सबको बोलते हैं देखो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का विधि है, लेकिन इसको वही व्यक्ति कर सकता है जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है हरिद्वार में। सबको वहां पहले योग सिद्धि सिखाई जाएगी, उसके बाद आप में योग्यता आएगी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के। सब बोलते बात तो है भैया कुछ, मम्मी मैं भी जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। हाँ बेटा तुम भी जाओ, सब जाओ, पड़ोसी का बेटा भी गया, चलो सब सब कॉम्पिटिशन होता है। यहाँ हम लोगों पकड़ते हैं, आइए आइए जप कीजिए, पीछे हो जाओ, चलो टाइम नहीं है। That way, it is so easily available, इतनी आसानी से उपलब्ध है, हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं भक्ति सो सिंपल दैट वी मिस इट, इसको हम खो बैठते हैं, इसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए, इतनी महान है, ये कृष्ण की कृपा है। परम पुरुषोत्तम भगवान अपने आपको इतनी आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं। इस बौद्धिक जगत का हर वस्तु में, हर कार्य में निराशा है। इस बौद्धिक जगत का स्थायी भाव है निराशा। मन का मतलब है निराशा का भंडार, और हम मन की शरण में रहते हैं, निराश ही निराश। और ये कोई निराशावादी व्यक्ति दुखी होकर नहीं कह रहा कि सब बेकार है, उसको हर जगह विफलता मिली। ये मत है पूर्ण सबसे बड़े आशावादी व्यक्ति का। सबसे बड़ा आशावादी व्यक्ति कौन है? कृष्ण का। कृष्ण सबसे बड़े आशावादी हैं। इस आशा में कभी तो कभी मेरी तरफ मुड़ेगा, हिम्मत नहीं हारे महाराज भगवान, चलो कभी तो मेरी तरफ देखेगा, कभी तो मेरी तरफ देखेगा। कितने बड़े आशावादी हैं, और वो कह रहे हैं इस बौद्ध जगत में निराशा ही निराशा है, निराशा ही निराशा है। तो वहां हमें आकर्षित होने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हमारा मन फिर वो भागेगा, अपने आप को याद दिलाएं, इस पर मनन करें, कोई फायदा नहीं है, अपने ही अनुभव से सीखें, सब निराशा है। और जहां इतनी बड़ी आशा है, केवल भगवान को भोग लगाना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान के सामने नाचना है बस। अरे भगवान बड़ी तपस्या के लिए कह ही नहीं रहे कुछ, बस एकादशी रख लो कभी कभी, ये तपस्या है। वो प्रभुपाद ने इतना आसान बना दिया, जो मर्जी खाओ पियो, बस अन्न मत खाना। इतना सरल प्रोसेस, और उसके बाद भी हम इस संसार की गंदी गंदी वस्तुओं से आकृष्ट हो जाते हैं, तो इतना बड़ा हमारा दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए आज हम इस श्लोक से ये सीखें, इस पर मनन करें, और ये प्रार्थना करें कि हम भक्ति को इतनी आसानी से बताया गया है, इतनी सरलता से हम कर सकें और भगवत धाम वापस जा सकें। आप सबका बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है तो महाराज, एनी कमेंट्स?
हरे कृष्णा, यू मेंशन्ड अबाउट चेंजिंग थिंग्स।
आपने चीजों को बदलने के बारे में बताया।
प्रभुपाद यूज्ड टू से, एंड ऑफ कोर्स द मूवमेंट बिगन इन अमेरिका।
अपने
हाथों पे अब चलना चाहेंगे आप, तो पैरों की जगह हाथ पे चलना चाहेंगे।
So now we see that in our movement, so many decades after Prabhupada's disappearance, it's a major challenge because newer devotees want to change things.
इस आंदोलन को कई दशक हो चुके हैं, तो कई नए भक्त आ रहे हैं, वो चीजों को बदलना चाहते हैं।
And it is a major fight to stick with instruction of acharya.
तो एक बहुत बड़ी जंग है कि आचार्यों के निर्देशों पर टिके रहें।
Just the only success formula.
ये एक सफलता पाने का एक फॉर्मूला है।
The question that you asked is, devotional service difficult or is it easy?
आपने एक प्रश्न पूछा कि ये भक्ति बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है?
Of course, that requires a lot of deep thought.
इसके लिए बहुत गंभीर विचार करने की बात है। तो
But it's something like driving a car.
ये कार चलाने के समान है।
Is it difficult or is it easy?
कार चलाना आसान होता है कि मुश्किल है?
It depends a lot on how careful you are. Especially in India.
बस ये इस पे निर्भर करता है कि आप कितने सतर्क हैं, खासकर भारत में। तो
इस both easy and difficult simultaneously.
तो ये बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी है.
If we are fortunate enough, by the mercy of Guru Granga, if we are fortunate enough to get Ruchi, then it's easy.
अगर आप भाग्यशाली आपके अंदर गुरु गौरांग की कृपा के कारण रुचि है तो ये बहुत आसान है.
If we haven't got Ruchi, then it's very like driving a car without oil. Very, very difficult.
तो अगर आपके पास रुचि नहीं है तो ये बहुत मुश्किल है.
Then you said somebody asked, say, supposing 15-year devotee, but I don't feel I'm making any progress.
कोई एक भक्त पूछे मैं 15 साल से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कुछ मैंने प्रगति करी है.
There's a famous story by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. About the wedding party.
शादी के बारात के बारे में.
The wedding party was on the boat and they had to go down the Ganga. Let's say they had to go 40 kilometers down the Ganga, so better to go by boat than to go by road.
तो एक बारात को गंगा पार 40 किलोमीटर जैसे मान लीजिए आगे जाना था तो बारात नाव में थी और उनको गंगा पार करके जाना था.
It was overnight journey they were supposed to reach by morning.
ये पूरे रात की पूरी यात्रा थी और सुबह उनको नदी के पार पहुंचना था.
In the morning everybody wakes up, the sun rises, they look, say, "Hey, what is this? What is this? What is this nonsense? This is crazy. The boat has not moved. The boat has not moved."
सुबह हो गई लेकिन बोट वहीं पे खड़ी थी. सबने कहा ये तो बहुत क्या हो गया, नाव तो बिल्कुल भी नहीं हिली है यहाँ पे.
Then everybody begins looking feverishly. What is the problem? Why the boat didn't move? The oars on the boat were going, the men were rowing, everything was going. But we did not move out of the dock. What happened?
लोगों ने देखा क्या समस्या आ गई कि सब कुछ लोग नाव भी चला रहे थे, सब आदमी काम भी कर रहे थे, फिर भी एक नाव एक इंच भी नहीं हिली.
And somebody found, oh, it's the anchor, the anchor. They didn't pull up the anchor.
तो फिर लोगों ने देखा वहाँ पे जो लंगर था वो नहीं हटाया था.
So the anchor is the 10th offense, and that is our biggest problem, the 10th offense. We don't pull up the anchor. We keep desperately hanging on. To much of which remains on the subtle plane and the subconscious, we desperately hang on to these different kinds of attachments, and then they affects the quality of our service. So we don't. It makes it difficult to get ruchi. That is the 10th offense.
तो ये जो जो लंगर है ये 10वें अपराध के समान बता रहा है कि हमारी हमारी आसक्ति कई भौतिक चीजों से होती है.
बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच महाराज. श्री प्रभुपाद की जय. निधाय गौर प्रेमानंद.